अब इसके बाद पूरा एंड पे एक ही टॉपिक है, मैं इसको इकट्ठा लेके, हालांकि बातें बहुत डिफरेंट हैं लेकिन थीम एक ही है, आयत 116, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए और बख्श देगा इसके अलावा जो कुछ है जिसके लिए चाहे, सबके लिए नहीं, यानी अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की बख्शिश नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो चाहे। सजा क्या मिलेगी शिर्क की? वमई युश्रिक बिल्लाही फकद दल्ल दलालम बईदा, और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए, यानी कोई शिर्क करेगा, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, तो वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। ये पहली सजा है शिर्क की। हम कहते हैं ना शिर्क की सजा जहन्नुम है, वो तो आगे जाके मिलनी है। दुनिया में शिर्क की पहली सजा अल्लाह की तरफ से जो बंदे को मिलती है वो क्या है? फकद दल्ल दलालम बईदा, अल्लाह उसको रास्ते ही भुला देता है, गेट आउट, तुम तो मेरे नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से, किसी कब्र पे जाओ, किसी बुजुर्ग से मांगो, किसी से मांगो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मेरे लिए ये चीज़ पसंदीदा नहीं है, मुझे तुम अच्छे ही नहीं लगते। एक रिवायत का खुलासा आता है कि जब एक शख्स किसी मुश्किल में फंसता है और दिन रात अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसको नहीं देते, फरिश्ते एक दिन उससे कहते हैं कि अल्लाह ताला ये बंदा हर दिन तुझसे ही तो मांगता है, इसको पता है कि तू ही देगा, तो आप दे दीजिए, देना भी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ मैंने देना है, मैं दूंगा, लेकिन जब ये सिर्फ मुझसे ही मांगता है तो मुझे मज़ा बड़ा आता है, आई लाइक इट। मैं इसकी और बातें सुनना चाहता हूँ, जैसे आप देखें ना बच्चा माँ के पीछे फिरे, गुस्सा तो आता है लेकिन दिल में खुशी नहीं हो रही होती कि सिर्फ मुझसे ही मांग रहा है, दूसरा देना भी चाहे तो रोक के कहता नहीं माँ से ही लेना है, खुशी होती है इंसान को कि अच्छा ये सिर्फ मेरे से लेता है। इसके बरक्स एक बंदा जब दुख सुख तकलीफ आई, अल्लाह से मांगा, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, है अब्दुल कादिर साहब, हैं वो फलां साहब, वो ठट्ठा वाले, वो पंजाब वाले, वो लाहौर वाले, इधर से उधर भागता है गुमशुदा ऊंट की तरह निद्दा, तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं जाओ फौरन इसको दे दो, क्यों? क्योंकि जब ये मेरे सिवा किसी दूसरे से मांगता है तो मुझे घिन आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, फौरन जाके इसका काम कर दो ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। हाँ इसको एक सजा जरूर देना, इसके दिल में ये ख्याल डालो कि इस कब्र वाले से मिला, बाबा जी की न्याज है, ये है फकत दल्ला दलालम बईदा। मुशरिक गैर से खुश होके आता है कि देखा गए थे ना बाबा जी के पास तो काम हुआ है ना, और फिर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, इस तरह से ये बात इंसान के सामने आती है, और कहते हैं कि वो शख्स जिसका ये मामला पीछे चल रहा था उसी के साथ भी ये आयतें आती हैं, तो वो शख्स जब इस सारे मामले से हटा, वही नबी सल्लम पे बात करके को चोरी से बात शुरू हुई थी ना, आखिर कहते हैं कि वो वहां से मक्का चला गया, मुशरिकीन से मिला और उसको शिर्क पर मौत आई, ये उस शख्स की बात भी हो रही है। एक गुना लीड्स टू दी अदर गुना, आप पहला गुना मुश्किल से कर लें, अगला गुना खुद ब खुद फिसलते हुए हो जाएगा, फिर मजबूरी बन जाएगी, शौक बन जाएगा, और इस तरह होगा। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स कहीं से गुजरा, दो लोग थे सफर कर रहे थे, एक ऐसी तंग जगह थी कि सिर्फ ओनली वही रास्ता था वहां से गुजरने का, वहां कुछ लोगों ने अपना बुत रखा हुआ था, जो शख्स वहां से गुजरता कहते कि कुछ चढ़ाओ हमारे बुत पे चढ़ावा तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। इन दोनों को भी उन्होंने यही कहा, मजबूर किया कुछ चढ़ाओ, ऐसे उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, पकड़ो एक मक्खी चढ़ा दो, बस हमारी अना की तस्कीन है कि हमारे बुत को चढ़ा दिया। एक शख्स ने कहा अच्छा लाओ मक्खी, ये पकड़ो मक्खी, पकड़ के कहा तेरे बुत के नाम पे, यानी मक्खी को बुत की नजर कर दिया, उन्होंने कहा लेट यू गो, चले जाओ, चला गया। दूसरे को कहा आओ तुम भी, उसने कहा मैं तो मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि मक्खी भी मेरे रब की पैदा करता है, उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। हदीस में आता है कि पहला शख्स मक्खी के चढ़ावे की वजह से जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया और दूसरा शख्स उस बात पे कि उसने स्टैंड लिया वो जन्नत में आ गया। याद रखिए अकीदा हमसे कुर्बानियां मांगता है, जानी भी और माली भी। शिर्क के बहुत मुख्तलिफ रूप होते हैं, बहुत मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इंसान को इस तरह से अपने आप को देखना चाहिए कि अल्लाह शिर्क को माफ कर देगा, शर्त एक है कि जिंदगी में तौबा की हो। नबी सल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया, कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसके बावजूद गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, हाँ बस एक बात है कि मैंने कभी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, जब से अल्लाह को पहचानता हूँ ना तो उसके सिवा किसी को वली और दोस्त बनाया, और ना ही मैंने बेबाकी के साथ कभी गुनाह किए। बस डरते डरते गुनाह सरजद हो जाते हैं, और यानी पलक झपकने के माने, यानी जस्ट लाइक फॉर ब्लिंक ऑफ द आई भी मेरे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अल्लाह से भागकर उसको आजिज कर सकता हूँ, और मैं अपने गुनाहों पे नादिम और तायब भी हूँ। तो आपका क्या ख्याल है कि मेरा क्या होगा, अल्लाह के हाथ मेरा क्या मुकाम पाते हैं? तो कहते हैं कि इस पर रियायत नाजिल हुई थी कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। इसका ये नहीं मतलब कि आप शिर्क ना करें, बाकी गुनाहों की छुट्टी मिल रही है। लिमन यशा की कैद डराने वाली है, और हो सकता है हम उसमें ना आए। तिर्मिज़ी की रिवायत है हज़रत अली से कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा पसंदीदा आयत मुझे यही है कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु युश्रक, क्योंकि सहाबा के दिल इस पे तो ठुके हुए थे कि अल्लाह के मामले में वो बहुत सीरियस हैं। तो बात यह है कि एक अकीदे दुरुस्त हो गए तो मामलात भी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। और इसी के ऊपर इंसान को सबक दिया गया कि तुम अपने आप को बेहतरीन तरीके से रखो। इसके बाद आप देखिए कि अब इसकी कुछ छुपी हुई किस्में, इन यदून अमिन दून ही इल्ला इनासन, नहीं वो पुकारते मगर देवियों को, औरतें हैं वो। यानी शिर्क किस किस्म का करते हैं कि अल्लाह को छोड़कर देवियों को पूछते हैं, यानी चलो अल्लाह को छोड़कर कोई अल्लाह ही जैसा कुछ उससे मिलता जुलता ढूंढते हैं जो है कोई नहीं था। मुशरिकीने मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। दूसरी बात है कि औरत कल्चर उनके दिमाग पे इतना छाया हुआ था कि जितनी उनकी मूर्तियां थी ना, वो मेल की बजाय फीमेल थी। आज भी अगर आपने कभी किसी फिल्म में देखा हो तो अमूमन जो बुत होते हैं ना, वो फीमेल ज्यादा होते हैं, लिपस्टिक लगे हुए, कजला डले हुए, फूलों के हार और साड़ियां पहने हुए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर एक कमजोर सी हस्ती को पुकारते हो, देवियों को, और असल में वो उस बुत को नहीं पूज रहे होते, देखने में वो सजदा उस देवी को करते हैं, लेकिन वही यदून इल्ला शैतान मरीदा, वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को जो माबूद बनाते हैं, असल में वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं। क्या पता चला कि बजाहर शैतान के आगे कोई सजदा नहीं करता, इल्ला ये कि वो डेवल डिसेपर्स के नाम पे जो ग्रुप है जो बजाते हैं, खुद शैतान की शिवि बना के उसको पूछता है। अमेरिका में एक पूरा ग्रुप ऐसा, एक जगह एक बस्ती उन्होंने बनाई हुई है कि जहाँ लिटरली शैतान को सजदा करते हैं, कहते हैं वी प्रोस्ट्रेट फॉर डेवल, और शैतान की जो शिविहें बनाई हुई हैं, एक खास बस्ती उन्होंने बनाई हुई है नेकेड सिटी के नाम पे, कि वहां कोई कपड़े पहन के नहीं जा सकता क्योंकि शैतान की पूजा है, तो यही कुछ तो होगा। लेकिन जो बुत को पूजते हैं, कहते हैं हर बुत के पीछे शैतान खड़ा होता है। जब लोग बुत को सजदा करते हैं तो असल में शैतान को करते हैं, और हकीकत भी यही है कि अल्लाह को छोड़ने वाला कभी भी दूसरों को खुश कर नहीं सकता। और इसी तरह आप देखिए इनासन से मुराद जहाँ बुत है, औरतों वाले जेवर पे नाते, लात मनात उज्जा, ये फीमेल नाम है जो उनकी देवियों के थे, फरिश्तों को मनाते थे, उसकी तरफ भी इशारा है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं जिस शैतान को तुम जानते या अनजानते में पूछते हो वो है कैसा, शैतानम मरीदा। मरीद क्या है, मरदा, रद्द किया हुआ भी, और मरदा कहते हैं जैसे बंजर, यानी जैसे क्लीन शेव जो शख्स होता है ना वो मरदा होता है, बगैर दाढ़ी और मूंछ के होना, यानी मुराद के किसी का बिल्कुल भी खैर से खाली होना, कि ये उस शैतान को पूछते हैं जिसके पास कोई खैर नहीं है, उसको खुदा बना रहे, उसके पीछे लगे हुए हैं, और असल में तो शैतान जो है। और आपको पता है कि उनके हर कबीले के शैतान फर्क थे, बुत फर्क थे, उसी से उनको पहचान थी, बल्कि कहा करते थे इनासन बनी फलानन, ये फलां कबीले का बुत है। मरीद कहते हैं उस शख्स को जो इतात से बाहर निकल चुका हो, उर्दू में इसको आप सरकश कहेंगे। तो गोया के अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत की जाती है वो मिरार है। अब होता क्या है कि जब अल्लाह को छोड़ते हैं ना, तो उसकी जगह फिर शैतान की मोहब्बत आ जाती है। अब शैतान के कुछ वसफ जिनको सुनते वक्त गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन जब बचना होगा तो मुश्किल लगेगा। अल्लाह ताला कहते हैं लानहुल्लाह, आयत 118, लानहुल्लाह, उस पर अल्लाह ने लानत की। यानी तुम उसकी मानते हो जिस पर अल्लाह ने लानत की, रहमत से दूर किया। वकाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिक नसीबम मफरूदा, और उसने कहा कि अलबत्ता ज़रूर मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेके रहूँगा। मुराद क्या है कि उस शैतान की इताअत करते हो जिसने अल्लाह को चैलेंज दिया था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा ले लूँगा। मतलब क्या है, इसके ऊपर एक हदीस आती है, क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम बैठे होंगे और उनकी सारी औलाद सामने होगी। अल्लाह ताला उनको कहेंगे कि आदम अपने बच्चों में से जन्नतियों और जहन्नमियों को छांट लें। सोचिए ज़रा, आप इमेजिनेशन में लेके आए, जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग कर दें। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह ताला किसको जन्नत और किसको जहन्नम में, तो कहा जाएगा कि हर 1,000 में से एक को जन्नत में और 999 को जहन्नम में डाल दो। ये है नसीबम मफरूजा। कितने परसेंट को शैतान लेके जा रहा है। हदीस में आता है कि इंसान ऊंटों की तरह है, हर 100 ऊंटों में से कोई एक ऊंट काम का होता है। तो ये इंसानों की जो भीड़ हमें अपने इर्द गिर्द दिखती है, उनमें नाकारे ज्यादा हैं, काम के थोड़े हैं। अल्लाह ताला ने उन काम के लोगों को जन्नत में डाल के बाकियों को जहन्नम में लगा के ट्रैश बना देना। तो कह लीजिए नसीबा मफरूजा के 1,000 में से 999। अल्लाह ने हमें जिक्र अस्कार के जरिए इसी शैतान से बचने का हुक्म दिया जो हम करना ही नहीं चाहते, मुश्किल लगता है। जितना ईमान ज्यादा होगा शैतान से बचेंगे, जितना जिक्र अस्कार ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उससे बचेंगे। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल में, इसने कहा था अल्लाह मैं इन आदम की बच्चों के हिस्से लूंगा, इनकी नस्लों में से अपने साथ लूंगा, इनके माल में से हिस्से लूंगा। यानी हमारा हर वो माल जो अल्लाह की नाफरमानी में लगता है वो शैतान खुश होता है। हमारे बच्चे जो वो काम करते हैं जो अल्लाह को नहीं पसंद, वो शैतान के काम है। अब शैतान के जरा चैलेंज देखिएगा। वला उदिल्लन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर इनको बहकाऊंगा। कौन कह रहा है? दुश्मन खुदा और हमारा दुश्मन, हिदायत के रास्ते से इनको दूर कर दूंगा। सूरत अलाराफ में आप पढ़ेंगे कि लाखुदन्ना, मैं बैठ जाऊंगा इनके सीधे रास्ते पे, दाएं बाएं आगे पीछे से आऊंगा, भटका दूंगा। और क्या करूंगा? वला उमन्नियन्नहुम, इनको आरजुओं में उलझा दूंगा। आरजुओं से मुराद कौन सी आरजुएं? बातिल उम्मीदें। उमनिया कहते हैं झूठी आरजू को। मिसाल है कि कोई आप में से कहे मैं फिर 16 साल की हो जाऊं, झूठी आरजू है ना। कोई औरत कह दे, लड़की कह दे मैं लड़का बन जाऊं, तो बातिल उम्मीदें। अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, लंबी उम्र आएगी, होगा ये होगा, यानी इनको दुनिया की इतनी आरजुएं दिला दूंगा इनका पेट ही नहीं भरेगा चाहे 100 चीजें पहले होंगी। उसी दुनिया को और लेने पाने की आस में ये सोने जैसे ये अल्फाज और मोती और जैसी नमाजें छोड़ देंगे। आरजुएं लंबी लंबी लंबी, तौबा की उम्मीद पे गुनाह करवाएगा, लंबी लंबी आरजुएं। और वल आमुरन्नहुम, और अलबत्ता उनको हुक्म दूंगा। देखिए हुक्म के लफ्ज हैं वाला शिद्दत, लंबी आरजुओं के बाद हुक्म पे आ जाएगा। शुरू में पहले ख्वाहिश, फिर आरजू, और अब हुक्म पे आ गया, फिर उसका कंट्रोल हो जाता है ना हम पे। क्या करेंगे? फला युबत्तिकुन आज़ान अलनाम, और अलबत्ता वो काट देंगे जानवरों के कान। अरबों की रस्म थी कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता तो उसका एक कान चीर देते, बुतका कहते हैं। ये पढ़ेंगे आगे सूरह मायदा में आएंगी ये सारी चीजें, फिक्र न करें इंशाल्लाह। तो वो लटकी हुई चीज होती थी, वो इस चीज की निशानी थी कि ये जानवर बुत के नाम पे छोड़ दिया। जिस गाय भैंस बकरी को किसी बुत के थान पे छोड़ते ना, तो उसको निशानी के तौर पे चीर देते, खून लगा देते। कल के लोग तो जानवर छोड़ते थे, आज के लोग बच्चे छोड़ देते हैं। डोले शाही के चूहे, बच्चा हुआ तो इसको फलां कब्र पे छोड़ आऊंगी, ये सारी शिर्क की यादगारें हैं। कहा ये अपने जानवरों के कान काट देंगे। वला मुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, और अलबत्ता इनको हुक्म दूंगा पस ये तब्दीली करेंगे अल्लाह की तख्लीक में। ये है फितरत को बदलने वाली आयत, जिस पे मैंने कहा था कि प्लकिंग के बारे में अमूमन ये आयत आती है कि ये क्या करेंगे कि ये अल्लाह की खल्क में तब्दीली कर देंगे। अब ये तब्दीली किस रंग में होगी? सबसे पहले तो लिखिए कि इंसान पैदा किया गया था आखरत के लिए, उसको दुनिया के कामों में लगा देगा, खो जाएगा इंसान इस दुनिया में। इंसान की फितरत में था अल्लाह की इबादत, और वो डाल देंगे उसको शैतान की इबादत में। और तख्लीक में तब्दीली क्या है? औरत को मर्द बना देगा। औरत क्या थी? घर की चार दीवारी में एक औरत माँ थी, उसको जाके स्टैंड्स पे खड़ा कर देगा और काउंटर्स पे खड़ी होके वो लोगों की चीजें बेचेगी। औरत को बच्चे की तरबियत दी थी, बाप को बाहर के काम दिए थे, कवाम बनो। बाप घर में बैठे होंगे और माएं जाके बाहर काम कर रही होंगी और शॉपिंग्स कर लेंगी, है ना? तख्लीक बदल गई। फिर और तख्लीक में तब्दीली क्या है? औरत मर्द की तरतीब कैसे बदली? फितरत ने क्या कहा कि लड़की घर होगी, लड़का तलब करेगा। इस्लाम का माशरा क्या कहता है कि किसी की बेटी और बहन तो लड़का जाके उसे रिश्ता मांगेगा। अच्छा लगता है कि मर्द रिश्ता मांगे, ढूंढे। कदर होती है ना, आप ढूंढने गए, आपको कोई चीज मिली, आप खुश हुए, और घर लाते कोई चीजें ले लो मुझसे, कोई कदर नहीं होगी। आज क्या कहा कि औरत क्यों रिश्ते नहीं ढूंढ सकती, लड़की क्यों नहीं ढूंढ सकती? तरतीब बदली हुई हर तरफ के नहीं, औरत को मर्द और मर्द को औरत बना देगा। फितरत का असूल और कहाँ तोड़ता है कि अल्लाह ने जिस चीज को जिस चीज के लिए पैदा किया उससे वो काम नहीं कराएगा। जानवरों को अल्लाह ने गोश्त के लिए पैदा किया और मर्सी किलिंग के नाम पे बच्चों के दिलों में डाल दिया, नहीं गोश्त नहीं खाना है ये तो, आपने जब से बकरे को जिबा होता बच्चे ने देख लिया अब गोश्त नहीं खाते। क्यों जी? हाय बेचारे, तो भी ना खाएंगे जानवरों को तो रखेंगे कहाँ? वो कहते हैं ना कि एक गाय थी तो उसके ऊपर बेटा भी बैठ गया, बाप भी बैठ गया, तो के चलो तेज चलो, वो चले कैसे? वो तो अटक गई, तो उसको मारने लगे तेज चल, तो अल्लाह ने उस गाय को जुबान दी। ये हिकायत है कि अल्लाह ने हमें चलने के लिए तो नहीं था बनाया, हमें तो दूध के लिए चलाया था। अब जब हमें बनाया ही नहीं अल्लाह ने सफर के लिए, तो तुम हमें मजबूर करते हो। ये है फला युगैरुन्ना खल्कल्ला। फिर इसमें हर वो चीज आती है जो फितरत के खिलाफ है। मसलन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जो एक खास सिस्टम पे चल रही हैं। औरत बच्चे पैदा करेगी, उसको भांज कर देना, और मर्द नहीं बच्चे पैदा कर सकता। कोशिशें कर रहे हैं कि मर्द भी बच्चा पेट में रख के पैदा करे। तब्दीलियाँ, अल्लाह ने आंखें दी हैं, अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। आप अपनी आंखों पे जान के धोखे की खातिर ऐसे लेंस लगा लें कि लोग कहें इसकी ब्लू आईज है, धोखा हो गया ना। इसी के बारे में आता है कि इसके अंदर हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला से एक रिवायत आती है कि एक दफा एक औरत उनके पास आई। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मना करता है, हदीस है, लंबी हदीस है, जिसका खुलासा क्या है कि चार किस्म की औरतों पे अल्लाह की तरफ से लानत है, जिसमें से एक वो औरत है जो अपनी भवों के ऊपर के बाल कटवाती है, यानी ये जो भवों समझते हैं पलकों, जिसको आज के जमाने में प्लकिंग कहते हैं, यानी ये बाल, भवों के बाल। उस औरत ने कहा कि क्या ये बात कुरान में? तो हजरत इब्ने मसूद ने कहा हाँ कुरान में। चली गई, चंद दिन बाद आई, कहती मैंने तो पूरा कुरान पढ़ लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिली। तो उन्होंने फिर उसको सूरह हशर की वो आयत खोल के दिखाई, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ये आयत पढ़ी थी? कहा पढ़ी थी। क्या मतलब है? कि जो हुक्म रसूल ले उसको ले लो, और जिससे वो रोके उसको रुक जाओ। कहा ये देखो ये हदीस में, और उसको वो हदीस दिखाई। उलमाए किराम में से अक्सर ने इस आयत की तफसीर में उस हदीस को पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ से इस बात में कोई शक नहीं, ये बुखारी की रिवायत है। लानतुल्लाहिल वाशिमाती वन्नामिसात के लफ्ज आते हैं, गूदने वाली, गुदाने वाली, टैटूस, ये जो जिस्म के अंदर पक्के परमानेंट कलर्स करवा लेते हैं, और भवें नुचवाने वालियों और नुचने वालियों, यानी जिसकी कर रही हैं और जो कर रही है। अब आप इसकी लॉजिक पूछें, हुक्म क्या, दलील क्या? एक ही हुक्म है, एक ही दलील है, अल्लाह का हुक्म। जिसने बनाया उसको हमसे प्यार है। आप कहते हैं आज कुछ नहीं होता, लेजर करा ले, तकलीफ नहीं होती। आप कहते हैं जी इससे नुकसान क्या है, ये है वो है, अल्लाह का हुक्म क्या छोटा है? आप अल्लाह के हुक्म क्या, कि अकल को दौड़ाएंगे? जब आप अकल को दौड़ाएंगे तो नुकसान क्या होगा? कि आपकी अकल यार है वो कोई ना कोई लॉजिक लेके चली जाएगी। तो अल्लाह का हुक्म वही की रोशनी में लेना है, अकल की रोशनी में नहीं लेना। ये सबक हमने चंद दिन पहले पढ़ा था। क्या ये छोटी बात है कि जिसने आपको बनाया वो कह दे ये नहीं करना? आप सहन करते हैं कि आपके बच्चे आपसे पूछे वाई क्यों, वाट, वजह बताओ, रीजन बताओ। आई एम योर मॉम, आई टोल्ड यू, दैट्स इट। तो क्या अल्लाह को इतना भी हक नहीं, इतनी नेमतें दे के क्या आई टोल्ड यू कोई रीजन नहीं है? बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन नहीं करना, बोलेंगे आगे से हम यार। फिर इसी तरह तीसरी चीज उसमें आती है कि दांतों को घिसवाने वालियों और वालों पर। मजे की बात है कि जो कर रहा है, जो करा रहा है, इसलिए जो ऐसे काम करते हैं, जॉब करते हैं, एज अ प्रोफेशन करते हैं, वो इसमें शरीक है। और इसी तरह चौथी चीज कही कि आराइश के लिए, यानी घिसवाने वाली, और अपने बालों में नकली बाल लगवाने वालियां, मोपिट्स। नकली बाल पलके लंबी कर लें आप, बालों के पीछे जूड़े के रख के एक कोहान ऊंट की तरह बना लें, कुछ भी बना लें। देखिए इस्लाम जो है ना वो हमसे कोई बैर नहीं रखता, और कोई बड़े खूबसूरत नहीं लगते अल्लाह की नाफरमानियाँ करके। सारी चीज़ें जमा करके देख लें, जो फितरी और मासूम हुसन होता है ना वो नुच जाता है। दो ही चीज़ें ना जो इस वक्त हमें थोड़ी सी चुभ रही हैं, प्लकिंग। औरत लड़की कम अज़ कम अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगने लगती है एकदम प्लकिंग करते ही, भोलपन मासूमियत ख़त्म चेहरे की। और ये जो सर पे हम सी हम बना लेते हैं, आपको पता है हम क्या लगते हैं? मोपिट लगते हैं, एक मॉडल लगते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत तसन्नो वाले। अकड़ आ जाती है। अल्लाह तो कहता है कि अपने आप को अजीज करो, तो अल्लाह मना नहीं करता आपको अच्छा लगने से, और अल्लाह मना नहीं करता आपको किसी की नज़रों में जचने से। अल्लाह ताला को अच्छा लगता है कि आप साथ क्यूट भी लगे, आप मासूम भी लगे, और आपको तकलीफ़ ना हो। आपको तो इतनी बारीक रगे होती हैं कि आज अगर उसके अंदर डॉक्टर्स ने कह दिया अभी खूबसूरती ना लग रही होती तो पता नहीं कभी भी ना ये काम कोई करता। बारीक टिश्यूज़ है, आपकी आई साइट ख़राब है। आप कहते नहीं सारे लोग इतने मरे हैं, कुछ भी नहीं, कंधे होके तो नहीं मरे, तो जरूरत की बात है। लेकिन बहरहाल इधर तख्लीक के अंदर, तब्दीली के अंदर ये बात आती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बात को सुन के मानने वाला बना दे। हुज्जतें नहीं करनी, तौफीक मांग लें। अब आपके जहन में सवाल है फिर क्या करें? करते थे, दुआ करें अल्लाह से, किन करें? मैं भी करती थी, आप मुझे कोई फरिश्ता ना समझें। बचपन में हम सब कॉलेजों में गए हुए हैं, दोस्तें ही पकड़ के कर देती हैं, और यूं लाला के एक दूसरे को दिखाती थी, ऐसे लगती है वैसी लगती है। जिस दिन बात दिल में आ गई नहीं करनी, अल्लाह से दुआ की थी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे देख के हर वक्त यही सोचते रहते होंगे ये क्यों नहीं करते, कईयों को पता भी नहीं चलता होगा। आप कभी सोचा करें कि क्या खूबसूरत लगना ही सब कुछ है, और क्या जो सब बड़े खूबसूरत लग चुके हैं वो खुश हैं आज? फिर तो कोई गुलुकारा को किसी को डिवोर्स ना होती। और दुख मुझे उस वक्त होता है जब लोग शोहरों का नाम लेते हैं, इतने करीब आप उनको किया हुआ है कि आप कहते हैं जी शोहर प्लगिंग करने के मजबूर करते हैं, बड़े दुख की बात है। कल वो भी कह देंगे ये मुझे क्लीन शेव पे मजबूर करती है। तो ये सिर्फ लूप होल्स है, अंदर की बात नहीं है। आप ब्लीच कर सकते हैं, बालों को छुपाना है, यानी कुछ भी। जहन में सवाल है तो उसकी बात कर रही हूँ कि अल्लाह से दुआ करें, और आप यकीन करें कि फिर आते भी नहीं है बाल। ये जो हम करते हैं ना, तो वो एक बाल खड़ा होता है ना तो वो तीर की तरह दिखता है। कुछ दिन छोड़ दें दिल बड़ा करके, शीशा ना देखें, ओपन एयर में ना देखें, आम दूर से देखें, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप देखेंगे कि वो बाल जब एक दो दफ़ा आएंगे ना फिर ब्लेंड हो जाएंगे। जब हम बिल्कुल वो एक वो चटियल मैदान बना देते हैं तो फिर तो वो एक बाल भी दिखेगा। और कहीं जाना है तो मुसीबत पड़ी हुई है कि पहले हाथ पकड़ लें कि ये हथियार हाथ में जाएंगे। अपने आप को किसी बड़े काम में लगा लें, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों से आसान कर देगा। अभी तो इसकी बात है ना, मर्दों को जिन्होंने शेव छोड़ी उनके सिस्टर से बात पता चलती है कि कुछ मर्द हैं वो शेव करते थे रोज। फिर समझ आ गई बात, क्योंकि आपको भी तो खुश कर दूं ना कि आप कहेंगे ये इस्लाम का हर मसला इस औरत के खिलाफ क्यों पड़ता है। तब्दीली क्या है कि मर्द के चेहरे पे बाल है, फितरत है ना। तो शैतान कहता है उसको एक औरत की तरह बना दो गोल मटोर, कैसा लगता है एक मर्द। तो ये भी सवाल है कि औरत के चेहरे पे और जगह भी बाल हो सकते हैं, दाढ़ी पे हो सकता है, चिन पे है, इसका क्या हुक्म है? कोई मसला नहीं, आप उतार सकते हैं। हजरत आयशा की रिवायत मौजूद है हदीस में कि गंदगी है इसको मचाओ। जिस्म पे औरत के बाल है, गंदगी है, उतार सकते हैं। आप दूसरों को तो नुमाइश नहीं कर रहे, आपको खुद सफाई का एहसास होता है, आप अपने किसी भी ऐसे बंदे के लिए कि जिसकी उस पर नज़र पड़ सकती है, ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है। जिस जगह को रोका है उस चीज़ को रोक दिया। मर्द को कहा कि बाल रोको, आप देखिए कि मर्द के दाढ़ी आने दो, शुक्र करो जान छुट्टी। हर रोज़ सुबह रात जंग नहीं निकलती घरों में, एक जंग लगी है, बाल कह रहे हैं मैंने नहीं निकलना है, मर्द कहते हैं हमने उतारना है। तो कई सिस्टर्स की तरफ से ये आता है कि जब से मर्दों ने छोड़ दी दाढ़ी, छोड़ने का मतलब समझ रहे कि उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, तो कहते हैं कि हमारा तो कितना काम ही ख़त्म हो गया, खुश हो गया, आसान हो गया काम, और जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी मर्दों की। आप अपने मर्दों को कह देंगे, आप चाहते हैं कि आपकी दाढ़ी आए ना, वो कहेंगे अच्छा कोई ऐसा तरीका आ गया कि अब हम बिल्कुल ही क्लीन हो जाएं, तो जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, क्लीन शेव बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो ये तो सिर्फ बात समझ आने की बात है। तो औरत औरत लगे, मर्द मर्द लगे, अल्लाह ताला ने बहुत सारी इसमें चीज़ें रखी हैं। फिर इस तरह देखिए इसमें और बहुत कुछ है, मैं सिर्फ जल्दी से बोल देती हूँ क्विकली जो भी चीज़ें इसके अंदर और आती हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अधूरा ना रह जाए। जैसे बीज है उसके अंदर फितरी तौर पे दोबारा उगने की सलाहियत होती है। आज बड़ी ताकतों ने बीज को स्टरलाइज कर दी है ताकि हर साल छोटे मुल्क हमारे से खरीदे। ये भी फितरत में तब्दीली है। औरत को मर्द बनाना, मर्द को औरत बनाना, जिन्स को चेंज करना, ये इसमें आ जाएगा। जानवरों को खसी करना, बाज़ बिल्लियाँ घरों में रखते हैं तो इसलिए कि अब ये इनके बच्चे ना, वो उनको स्टरलाइज कर देते हैं, जुल्म की हद है। फसलों को खसी किया जा रहा है। फिर इसी तरह आप देखिए कि फितरत का असूल है कि अंडे में से बच्चे, बच्चे में से अंडे, ऐसे अंडे अब बनाने शुरू कर दिए गए कि जिसके बाद फिर वो उसमें से और बच्चे नहीं निकलते। यानी जहां भी आर्टिफिशियल चीजें आएंगी वहां यही कुछ होगा। इंसान से इंसानियत खत्म कर दी। औरत और मर्द के अंदर एक अट्रैक्शन मकसद के लिए थी, उसको एंजॉयमेंट के तौर पर कर दिया। शादी के बाद ताल्लुकात फितरत है, मर्द औरत का आपस का ताल्लुक। शादी के बगैर इन ताल्लुकात को लड़की लड़के के नाम, किसी भी नाम से कर दिया। आप देखिए इलीगल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके कौन है बड़े, कोई भी नहीं उनके पास। 1987 की एक रिपोर्ट है कि अमेरिका में वियाना शहर है वहाँ की है कि 35,000 बच्चों के माँ बाप का नाम तक मालूम नहीं है। अपनी ख्वाहिश पूरी करके लोग इधर उधर छोड़ देते हैं। फूफियों के, बापों के और दादियों के नाम पता होना तो दूर की बात है। इंसान जब इंसान नहीं रहता ना तो वो जानवर भी नहीं रहता, इसलिए ऐसी चीज़ें। फिर इसी तरह आप देखिए कि फीचर्स चेंज करना, प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटी के नाम पे। अब ये एक फन है, किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट में कुछ जिस्म पे खराबी हो गई, चेहरा जल गया, नाक टेढ़ी हो गई, कोई हर्ज नहीं है, इलाज है तो ठीक है। और आप इसको करते हैं सिर्फ आप जैपनीज नोज के लिए, नाक रगड़ रहे हैं कि नाक छोटे हो जाए। हमारे बड़े कहते थे पीना होता है बच्चा जिसका नाक छोटा हो, और अब आपको तो फैशन है लंबे नाक को घिसा घिसा के छोटा करते हैं क्योंकि बड़े क्यूट फीचर्स हैं जैपनीज नोज। अपनी ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए सिलिकॉन के बैग रखवाना, ये क्या है? यानी आप देखिए कि जब हम बुत जो बनेंगे तो फिर हम अपनी कमियों को मेकअप तो करेंगे ना। फिर इसी तरह फैशन को मजबूरी बना देना, सिर्फ फैशन के लिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना जिससे धोखा हो सकता है। लड़के के लिए लड़की देखने आए, देख लिया जी लड़की की आंखें ब्लू हैं, उसको पसंद है, उसकी उसकी एक ही शर्त थी कि मुझे ब्लू आइज वाली लड़की चाहिए, पसंद करके ले गए। शादी के बाद अगले दिन जब वो लेंसेज उतार के रखेगी तो धोखा हो गया ना। आप कहेंगे क्या मेकअप नहीं धोखा? बिल्कुल नहीं धोखा, सबको पता लगता है मेकअप किया हुआ। जिस चीज में पता लग जाए कि कुछ किया हुआ, मेकअप मीन चेंज किया हुआ, वी मेड अप एनीथिंग राइट, वो ठीक है, उसके अंदर कोई धोखा नहीं। हदीस में आता है कि औरत वो रंग लगा सकती है जिसमें रंग उसका खुला हुआ हो, खुशबू दबी हो, और मर्द वो आरइश कर सकते हैं जिसमें खुशबू खुली हो, रंग दबा हो। अब मर्द सुर्खी पाउडर लगाते अच्छे नहीं लगते ना, इसी तरह औरतें ऐसी खुशबुएं लगा के कि जिसका बाहर से बाहर हो वो अच्छा नहीं लगता। फिर इसी तरह आप देखिए जुबान पे बाली का पहन लेना, गालों में कुछ इस तरह के काम करना, ये दांतों पे जो खोल लगवा लेते हैं बाज़ दफ़ा कवर गोल्ड का या ऐसा नहीं लगवाना चाहिए। अब कहेंगे अब छुट्टी कर दें, पहली भूख लगी हुई, अब दिल और डूब रहे हैं, लेकिन यकीन करें कि सारी बातें सिर्फ उसको समझ आएंगी जिसको एक बात समझ आ गई। क्या आ गई? इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन। और जो अभी 5 वक्त की नमाज पूरी नहीं पढ़ते ना, वो इस बारे में कोई सवाल ना करें कि प्लगिंग करूं कि ना करूं, वो पहले नमाज शुरू करें। जिनको अभी इस्लाम की बेसिक्स नहीं समझ आई उनको दूसरी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर इसी तरह और बहुत कुछ है, बच्चों को दूध ना पिलाना, दूसरा करना काम।